नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं संजय बैनर्जी। सप्ताह भर की क्रिकेट दुनिया की सरगर्मियों को समेटे हम हाजिर हैं आपके इस पॉडकास्ट के साथ। सुनो दिल से। आईपीएल के अचानक बीच रास्ते पटरी से उतरने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका दौरे की घोषणा कर दी। जितने कम समय में यह किया गया उससे साफ है कि यह अचानक लिया हुआ फैसला पहले से संभवतः तय नहीं था। हो सकता है आईपीएल के बाकी बचे मैचों की मेजबानी के सिलसिले में श्रीलंकन बोर्ड से किसी बातचीत के दौरान ये विचार कौंधा हो। जो भी हो, इस विचार में कोई बुराई नहीं है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब एक और जहां भारत की एक टीम इंग्लैंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलने में बिजी होगी, वहीं भारत की ही दूसरी टीम श्रीलंका का दौरा कर रही होगी। दरअसल ये क्रिकेट में भारत के बढ़ते वर्चस्व को दिखाता है। एक ओर जहां कुछ देश अपने टैलेंट में कमी को लेकर परेशान हैं, भारत में प्रतिभाओं का महासागर है। जुलाई में श्रीलंका दौरे का मतलब है उन प्रतिभाओं को भी मौका मिलना जो टीम इंडिया में खेलने का मादा तो रखते हैं लेकिन उन्हें वहां जगह नहीं मिलती। ये वनडे और टी20 सीरीज ऐसे ही कई खिलाड़ियों को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का मौका देगी। यही नहीं, टीम इंडिया में अपनी वरिष्ठता के चलते जगह तय मानने वाले प्लेयर्स पर भी इंग्लैंड में प्रदर्शन का दबाव होगा। कोरोना के चलते जब घरेलू क्रिकेट पंगु हो गया हो, आईपीएल को भी बीच में ही रोक देना पड़ा हो, तब श्रीलंका जाने वाली टीम के माध्यम से कई प्लेयर्स को मिलने वाले इस मौके की तारीफ करनी होगी। युवा और उदीयमान खिलाड़ियों के करियर में एक दो सीजन का भी बड़ा महत्व है और अगर ये पूरी तरह कोरोना को समर्पित हो गया तो फिर नुकसान तो बड़ा है। घरेलू क्रिकेट पर असर पड़ना मतलब करीब 800 खिलाड़ियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगना है। हमने अतीत में देखा है कि कई अनजान खिलाड़ियों ने आईपीएल के जरिए ही अपनी पहचान बनाई। क्या पता श्रीलंका का दौरा भी ऐसे ही कुछ प्लेयर्स को बाकी दुनिया से रूबरू करवा दे। श्रीलंका दौरे पर ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है जो हर तरह से योग्य होने के बावजूद इंग्लैंड में खेलने वाली टेस्ट टीम में जगह नहीं बना पाए। शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, हार्दिक पंड्या, श्रेयस अय्यर, ये ऐसे नाम हैं जिन्हें टीम में होना ही चाहिए। हार्दिक या शिखर धवन में से किसी एक को कप्तानी भी सौंपी जा सकती है। श्रेयस अय्यर भी कप्तानी के दावेदार हैं। अगर अय्यर फिट होते हैं तो शायद उन्हें भी कयादत सौंपने के बारे में सोचा जाए। युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, टी नटराजन, संजू सैमसन, प्रसिद्ध कृष्णा और भुवनेश्वर कुमार के अलावा ईशान किशन, दीपक हुड्डा, कृणाल पंड्या, सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी भारत की किसी भी टीम में आने का मादा रखते हैं। जाहिर है श्रीलंका दौरे पर टीम के जाने से इन प्लेयर्स को मौका मिलेगा। भारत के पास खिलाड़ियों को इतना बड़ा पूल होना सचमुच काबिल तारीफ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि राहुल द्रविड़ ने भारत ए टीम और अंडर 19 टीम को बनाने में जितनी मेहनत मशक्कत की है ये उसी का नतीजा है। दुनिया भी मानती है कि द्रविड़ ने जूनियर टीम और ए टीम के खिलाड़ियों को जिस तरह से मोटिवेट किया है वो सबके बूते की बात नहीं। यानी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बड़े पूल के लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी को दी जानी चाहिए तो वो राहुल द्रविड़ ही हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं और असफलता अनाथ होती है। तो बस उसी तर्ज पर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज और भारत के पूर्व कोच रहे क्रेग चैपल का मानना है कि राहुल द्रविड़ ने जो कुछ भी किया है वो उनके ऑस्ट्रेलियाई ढांचे से सीख लेने का नतीजा है। यानी द्रविड़ ने जो किया है सो ठीक है, लेकिन अगर भारतीय बेंच स्ट्रेंथ अभी दुनिया में सबसे मजबूत है तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की श्रेष्ठता का खुमार चैपल साहब को पहले भी था, लेकिन अगर वो सिस्टम सचमुच इतना असरदार होता तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ भारत से बेहतर होनी चाहिए थी, कमतर नहीं। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया का नंबर फिलहाल भारत के बाद ही आता है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने भी भारतीय बेंच स्ट्रेंथ की तारीफ तो की है, लेकिन साथ ही एक राइडर लगा दिया है कि भारत की जनसंख्या काफी है और इसी वजह से यहां प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की फौज खड़ी हो सकती है। माइकल वॉन शायद ये भूल गए कि अगर जनसंख्या से खिलाड़ी बनते तो वेस्टइंडीज पिछली सदी में तकरीबन 2 दशक तक इंटरनेशनल क्रिकेट पर राज नहीं करता। लब्बोलुआब ये कि जिसे क्रेडिट मिलना चाहिए उसे आप देते क्यों नहीं, उससे बचने की कोशिश क्यों करते हैं। और अंत में इसी सप्ताह एक नया विचार आया कि क्रिकेट का बल्ला लकड़ी से ही क्यों, बांस से क्यों न बनाया जाए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इस बल्ले को शक्ल दी है। उनका दावा है कि इसमें लकड़ी के बल्ले की तुलना में स्वीट स्पॉट ज्यादा बड़ा है, इससे स्ट्रोक भी जबरदस्त लग सकते हैं और किनारा लगने पर गेंद स्लिप तक ज्यादा कैरी भी नहीं करेगी। यूनिवर्सिटी ने एमेच्योर क्रिकेटर्स के लिए खासकर इस बल्ले की वकालत की है। रिसर्च के मुताबिक लकड़ी से बनाए गए परंपरागत बल्ले की जगह बांस से बने बैट इस्तेमाल किए जाएं तो यह ज्यादा कारगर होगा, रन भी ज्यादा बनेंगे और खर्च भी कम आएगा। हालांकि इससे पहले के शोध पर चर्चा रफ्तार पकड़ पाती, क्रिकेट नियम बनाने के लिए जिम्मेदार संस्था MCC ने साफ कर दिया कि बांस के बैट को मंजूरी नहीं दी जा सकती। बैट वही होगा जो सिर्फ लकड़ी से बनेगा। MCC के नियमों में साफ है कि क्रिकेट का बैट सिर्फ और सिर्फ लकड़ी से बना हुआ होगा और बांस चूंकि घास की प्रजाति का है इसलिए उसके बल्ले इस्तेमाल नहीं हो सकते। आखिर जब तक बल्ले से लगने वाली लेदर बॉल से टक की आवाज ना आए तो फिर क्रिकेट का मजा कहां है। सुनो दिल से में आज इतना ही। अगले हफ्ते क्रिकेट गपशप के साथ इस पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। अनुमति दीजिए संजय बैनर्जी को। चलते रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार।